तो बेसिकली इस नशिस्त का पर्पस जो है वो ये क्वेश्चन आंसर्स के जरिए अपने जहन को उस तर्ज फिक्र के मुताबिक ढालना है जिस तर्ज फिक्र का ये सिलसिला अजीमिया मुतकाजी है, जो चीज हमसे हमारे पीरो मुर्शिद चाहते हैं, उस नुक्ते को, उस जाविये को समझना और फिर उसको अपनी जिंदगियों में नाफिज करना। तो वो होता है ना, एक चीज को आपने पढ़ लिया लेकिन ये नहीं समझ आती कि इस पे अमल कैसे किया जाए। तो ये इस तरह से सवाल जवाब का एक सेटअप बन गया। ये आप लोग सवाल पूछेंगे, मैं उसके बारे में जो मैं अपनी फहम के मुताबिक आपसे शेयर करूंगा, उस पे गौर व फिक्र आपको खुद करना है। ठीक हो गया जी?
जी सर।
जी, तो बिस्मिल्लाह करें सवाल शुरू आप। जी जनाब।
जी, ये कहा जाता है कि खवातीन की जो रूहानी कमजोरी में कि हसद का शिकार हो जाती हैं, इसकी क्या वजह है?
माफी चाहता हूँ, दोबारा कहिए। ख्वातीन की क्या?
रूहानी कमजोरी की वजह कि ये हसद में मुब्तला हो जाती हैं।
हसद में मुब्तला होने की?
खवातीन
जी, हसद में?
वजह वजह
जी
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 वजह क्या है?
वजह जो
हालांकि
है
ये
वो
अल्लाह की कुर्बत को ज्यादा महसूस करती हैं, तो क्यों ये शिकार हो जाती हैं?
जिंदाबाद, बहुत कीमती सवाल। देखें, हसद क्यों फील होता है? हसद फील करने की वजह क्या है? पहले तो आप हसद को समझ लें। आज हसद कहते हैं जब कोई चीज आप अच्छी देखें और आपकी ख्वाहिश हो कि ये खराब हो जाए। हसद क्या हुआ? जब आप किसी अच्छी बात को, किसी बंदे को अच्छी हालत में देखें और आपका जी चाहे कि ये इस अच्छी हालत में ना रहे, तो ये क्या हुआ? ये हसद हुआ। इसकी डेफिनेशन को समझने के बाद आपको ये जानना आसान हो जाएगा कि क्यों होता है। होता इसलिए है कि हमारी जहनी तरबियत इस तरह की है कि हम खुद को कमजोर समझते हैं। चूंकि इंसान मादी तौर पे, जिस्मानी तौर पे बहुत कमजोर वाकया हुआ है, उसने इस मादी कमजोरी को जहनी कमजोरी बना लिया, जो कि नफूज कर गई उसकी रूहानी कमजोरी तक। ये दर्जा बदर्जा वो सीप इन करती है। अब ये जो हमारे अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको एक जुमले से कैसे खत्म किया जा सकता है? आप जब खुद को अल्लाह का महबूब मान लेंगे, आप जब ये तस्लीम कर लेंगे कि आप अल्लाह के महबूब तरीन बंदे की उम्मत में से हैं, आपको जब ये लगेगा कि मैं अल्लाह का चहीता हूं या अल्लाह की चहीती हूं, मुझे बताइए, आपको कोई जरूरत होगी किसी से हसद करने की? यानी जब आप खुद को अल्लाह से मुतालिक और मुंसलिक और रब्त में समझेंगे, तो आपको दुनिया की हर चीज हेच नजर आएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास ये ताल्लुक नहीं है। हाँ या नहीं? हसद कमजोरी की वजह से होता है। हसद खुद को कमजोर देखने की वजह से होता है। एक जुमला सुन लें, अल्लाह तवाना है इसलिए वो हसद नहीं करता। हम कमजोर हैं इसलिए हसद करते हैं। अगर हम अपनी कमजोरी को आइडेंटिफाई कर लें और जान लें कि असल कमजोरी क्या है, तो चूंकि ख्वातीन जाहिरी मुकाबले में रहती हैं, मसलन उसने ये कपड़े पहने हैं, उसके पास ऐसी गाड़ी है, उसका शौहर इतना की ज्यादा पैसे कमाता है, हमारे नजर चूंकि मादी जोन में ज्यादा काम करती है, लिहाजा हमें हसद होना एक बट नेचुरल है। लिहाजा इससे बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने जहन में ये बात जागजी कर लें, यानी इसे सेटल डाउन कर लें, इसको अपने माइंड में पक्का कर लें कि मैं अल्लाह के महबूब तरीन बंदे की उम्मत में से हूँ, मैं अल्लाह की महबूब मखलूक हूँ, अल्लाह मुझसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे इस बात का मुर्शिद करीम की वजह से, सिलसिले की तालीमात की वजह से, हजूर कलंदर बाबा औलिया के फैज़ान की वजह से, उनके तसर्रुफ की वजह से ये एहसास मेरे अंदर पैदा हो गया है कि मैं अल्लाह को बहुत पसंद हूँ, मैं अल्लाह की बड़ी चहेती हूँ। आप गौर करें कि हजूर मुर्शिद करीम क्या बात फरमाते हैं, कहते हैं कि जब आप नमाज के लिए वजू करके मुसल्ले पे बैठे हैं तो एक 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके ये तसव्वुर करें कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे देख रहा है, और कैसे देख रहा है, जैसे मतलब है आपके जहन में ये बात हो कि वो हस्ती जो मुझसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करती है मुझे देख रही है। अगर आपके अंदर ये बात उजागर हो गई, उजागर हो जाए कि मुझे अल्लाह की मोहब्बत और शफकत हासिल है, तो बताइए लोग आपसे हसद करेंगे या आप लोगों से हसद करेंगे, क्योंकि आपके पास वो एहसास पैदा हो गया जो किसी के पास मतलब कम ही मिलता है। शाज़ो नाज़र, शाज़ो नादर। आई होप के नाउ यू इट्स बीन क्लियर। थैंक यू जी जनाब। जी कोई और सवाल?
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है डॉक्टर साहब?
अल्लाह का फजल, आप सुनाए अल्हम्दुलिल्लाह।
जी हुक्म सर, हुक्म।
अच्छा छोटा सा सवाल है कि अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है, इसका क्या मतलब है?
इस हदीस, जी जी, इस हदीस का तर्जमा दुरुस्त कर ले, मतलब खुद ही ठीक हो जाएगा। हदीस के अल्फाज ये हैं, अल जन्ना तो तहते इकदामे उम्हातुकुम। हमने तर्जमा कर दिया कि जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों तले है, तुम्हारे माँ के पैरों तले है, पैरों के नीचे है। आप जरा सा गौर फरमाएं, तहते इकदामे उम्हातुकुम, तुम्हारी माओ, माँ नहीं का माओ, उम्हातुकुम, उम्हात, उम नहीं कहा, तुम्हारी माओ, यानी एक जनरल स्टेटमेंट है। इकदाम का तर्जमा आपने पैर कैसे कर दिया? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि जो तुम्हारी माएं इकदामात करेंगी उनके नतीजे में तुम्हें जन्नत मिलेगी, यानी आपकी तरबियत के लिए जो माँ इकदाम करती है, इकदामात करती है, जो आपकी लिए जान मारती है, उसके नतीजे में आपको जन्नत मिलेगी। अगर माँ ने तर्ज फिक्र ही ना बनाई तो कहाँ से जन्नत मिल जाएगी भाई? अगर माँ ने आपकी वो तर्ज फिक्र ही ना बनाई जो हजरत अवैस करनी की वालदा ने हजरत अवैस करनी की बनाई, अगर आपकी माँ ने वो तर्ज फिक्र को समझा ही नहीं जो हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी की वालदा ने समझा और अपने बच्चे में इन्फ्यूज कर दिया, اسی طرح مرشد کریم کی والدہ محترمہ نے امتر رحمان صاحبہ نے وہ باتیں جو اپنے بیٹے میں ان کی ذہن کے سانچہ بنانے میں لگا دیں, انہی کے یہ سارے وہ اقدامات ہیں جن کے نتیجے میں ان لوگوں کو میں نے تین نام لیے. آپ لوگ جب بات کرتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی تو شیخ عبد القادر جیلانی یا مرشد کریم, تو ہمیں صرف وہ بزرگ دکھتے ہیں, ہمارا ذہن ان کی اماں کے کیے ہوئے اقدامات تک نہیں جاتا. دیکھیں نا یہ ترجمہ جو ہے دیٹ کتنے لفظ ہیں, الجنہ تو تحت اقدام امہاتکم, چار لفظ ہیں, امہاتکم ایک لفظ گن رہا ہوں. غور کریں کہ ترجمہ غلط ہونے سے مفہوم کتنا بگڑ گیا کہ بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. کیونکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اماں پہ ہمارا ابا جناب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے اور اس بیچاری کے قدموں تلے سے تو زمین سر کی ہوئی ہے, وہاں جنت کہاں سے گھس جائے گی. کیوں جی, چلے بہت شکریہ, بات سمجھ آ گئی. چلے بہت شکریہ جی. اور کوئی سوال؟ جی جناب.
زمین میں فساد پھیلانے کا کیا مطلب ہے؟
فساد کہتے کسے ہیں؟ لفظ فساد جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے خرابی پیدا کرنا. زمین کے جو نظام ہیں اس میں فساد پیدا کرنا کا مطلب ہے اس میں خرابی پیدا کرنا. اب آپ مثال لیں, اب آپ یہ کاربن ایمیشن کا رونا رو رہے ہیں, کاربن کے ایمیشن کی زیادتی کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ جی اوزون کی لیئر جو ہے اس میں سوراخ ہو گیا, یہ کیا ہے؟ سب فساد ہے. کیا فساد ہے؟ یہاں سے لے کر نیچے آ جائیے زمین پہ, لوگوں کے آپس میں تعلقات چونکہ سسٹم کے مطابق نہیں ہیں لہذا قتل و غارت گری ہے, لوٹ مار ہے, یہ سب فساد کی ڈیفینیشن میں آ گئے. یعنی خرابی. زمین میں فساد کا مطلب ہے اللہ کے نظام, یعنی سسٹم جو کہ پورا ایک سکرین پہ ایک سسٹم ڈسپلے ہو رہا ہے اس میں خرابی پیدا کر دی جائے, اس کو کہا فساد. جی جی. اور کوئی سوال؟ اصل میں یہاں پہ تھوڑا سا فساد سے یہ ہٹ کر ہے, میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے فساد ہے کہ آپ جانے یا انجانے میں اللہ کے سسٹم کو خراب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں, آپ نے اس کے زیر اثر ایجادات کی, لیکن چونکہ آپ کی ایجادات محدود شعور سے وقوع پذیر ہو رہی ہیں لہذا آپ کی تمام ایجادات کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. غور کریں، انسان کی تمام ایجادات کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. مثلا یہ موبائل میں اور آپ یوز کر رہے ہیں، اب اس کی لہریں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمارے اعصاب کو بھی متاثر کر رہی ہیں. اب غور کریں کہ ضرورت سے زیادہ موبائل کے استعمال سے چکر آتے ہیں. اب یہ ایجاد کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اگر ہم اس کا غیر مناسب اور غیر ضروری استعمال کریں گے تو زیادتی کے مرتکب ہوئے. اب یہ فساد کے بجائے کیا لفظ بولا؟ زیادتی. کسی بھی چیز کو جب آپ اوور ڈو کریں گے تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ اثر انداز ہوں گے. اس لیے توازن اور اعتدال کا حکم دیا ہے قرآن نے، صاف کہا ہے کہ میزان کو خراب مت کرو. لا تخسر المیزان، یعنی اس میں گڑبڑ نہیں کرو. میزان یعنی یہ انسان جب برتر شعور سے ان چیزوں کا جائزہ لیتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ فساد کیا چیز ہے، سسٹم کو خراب کرنا. آپ اپنی طرف سے ایجاد کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، نوبل نے ڈائنامائٹ ایجاد کیا. اب ڈائنامائٹ سے مقصد تو یہ تھا کہ بھی پہاڑوں کو اڑایا جائے، اس میں سرنگیں بنائی جائیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے کام جو عام طاقت جسمانی طاقت سے ممکن نہیں ہے وہ کیے جائیں. لوگوں نے اس کو تخریب کا ذریعہ بنا دیا. جب وہ تخریب بنی تو وہ فساد کہلائے گا. لیکن جہاں چیزوں کا استعمال ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہے، یہاں تو ہر چیز آپ کمپیوٹر کا دیکھیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. آپ کی یہ جو مصنوعی روشنیاں ہیں، بلب جو ہیں، الیکٹریسٹی جو ہے، اب یہ کتنی بڑی ایجاد ہے. پنکھا چلتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس مصنوعی روشنی کے وہ فائدے تو نہیں ہیں جو نیچرل روشنی کے. تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس چلتے ہیں. ضمناً ایک بات حضور مرشد کریم سے سنی ہوئی، آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. ابا نے کہا انسان کی تو ہر ایجاد میں شور ہے. غور کریں، خاموشی نہیں ہے اس کی کسی بھی ایجاد میں. مشین چلتی ہے تو اس کا شور، تو ظاہر ہے یہ نوائز کو پلیوٹ کر رہا ہے، نوائز پولیوشن سوری کر رہا ہے. تو ایٹموسفیئر کی پولیوشن، یہ تو ہمارے وہ ہے نا جو محدود شعور کی وجہ سے ایجادات کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. ان کو انہیں براڈر سینس کہہ سکتے ہیں کہ فساد ہے کیونکہ محدود شعور نے کیا ہے، لیکن بہرحال وہ ایجاد اور اختراع بھی تو ہے نا، وہ بھی تو صلاحیتیں اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں نا. ٹھیک ہے جی، جی.
السلام علیکم سر، مجھے بھی ایک سوال پوچھنا تھا.
جی جی ارشاد.
سر میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ مطلب روح نہ عورت ہوتی ہے نہ مرد ہوتی ہے. بکری میں گئی تو بکری بن گئی، عورت میں گئی عورت بن گئی، مرد میں گئی مرد بن گئی. یعنی عالم اراف میں کوئی عورت مرد نہیں ہوگا، یعنی سب ارواح ہوں گی. اور اگر ایسا ہے تو پھر احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نوجوانوں کے سردار ہے جنت میں حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور عورتوں کی سردار ہوں گی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا. تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے.
آپ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا، میں بیچارہ کیا عرض کروں. دیکھیں نا، جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو تھوڑا سا ایک جملہ ایڈ کر لیں اس میں. اصل میں کہانی کیا ہے کہ ہم یعنی انسان، یہ اللہ کی تجلی ذات کا ایک نقطہ ہے. کیا ہوئے ہم؟ ہم ذات ہوئے. یعنی آپ اپنی جگہ تجلی ذات کا ایک نقطہ ہے، میں اپنی جگہ ایک تجلی اللہ کی تجلی کی کا ایک نقطہ ہوں. ٹھیک ہے، اس کی ذات کی تجلی کا ایک نقطہ ہوں. اللہ حاضر قیاس ہر انسان تجلی ذات کا نقطہ ہے، لہذا اس کا تشخص قائم رہے گا. روح جو ہے وہ ایک انرجی ہے. روح ایک انرجی ہے جو بکری میں بھی کام کر رہی ہے اور शेर में भी कर रही है, चींटी में भी कर रही है, आप में भी कर रही है, मुझ में भी कर रही है। ये वो एनर्जी है जिससे जात काम ले रही है, ये वो एनर्जी है जिससे जात जहन बना रही है, आपका नस्मा बन रहा है। ये नस्मा जो है ये आगे आपके जिस्म को बना रहा है, ये जिस्म जो है ये नस्मा की तहरीकात पे चलता है, और नस्मा ने चलना है रूह की तहरीकात पे, जो जात ने मोटिवेट करना है उसको। अब तमाम अंबिया कराम की तालीमात का लुब्बे लुबाब और खलासा यही है कि किसी तरह हम अपने जहन को रूह का घोड़ा बनने दें। इस वक्त सूरत हाल क्या है कि हमारा जिस्म हमारे जहन ने घोड़ा बनाया हुआ है, जैसा वो चाहता उसे वैसे चला रहे। तमाम औलिया कराम, तमाम अंबिया कराम की तालीमात का लुबे लुबाब यह है कि किसी भी तरह हमारा जहन रूह की तहरीकात को कबूल करना सीख ले। जो चीज आपसे उमिट हो गई है या जो चीज नजरअंदाज हो गई है हमसे, वो ये कि जात, हम एक जात हैं, जात का तजल्लिये, जात का क्या है तजल्लिये, जात का एक नुक्ता होने के नाते हमें ये अल्लाह रब्बे करीम ने इख्तियार और तसर्रफ अता किया है कि हम उस रूह से जो अल्लाह ने अपनी रूह में से हम में फूंकी उससे वो काम लें जो अल्लाह चाहता है। लेकिन हम यहाँ पे आके अपनी तरबियत की वजह से, अपनी जो भी हमें मुआशरे ने जो जहन अता किया उसके नतीजे में उससे गाफिल हो गए, उससे परे हट गए और कहाँ खो गए, जिस्म और जिस्मानी जरूरतों की हद तक सोचते हैं, लिहाजा हमारा दायरा फिक्र यहां महदूद हो गया। इसलिए फिर इस तरह के सवाल आते हैं कि जब रूह सब में एक है तो बाद में तो रूह कोई नहीं, बेशक कोई नहीं, रूह का जेंडर नहीं होता, रूह नर और मादा नहीं होती। ये दुनिया में आकर जब वो डिस्प्ले करना चाहती है तो वो जात जो है वो तय करती है कि भाई इसको नर की सूरत में लाना है या मादा की सूरत में, यानी कि इसने लड़का पैदा होना है या लड़की बनना है, फिर वो तशख्स बरकरार रहता है। ठीक हो गया जी? आपको इस बात से कुछ
आई एम सो ग्रेटफुल
जी। और कोई सवाल? जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मुझे बताएं कि ये जो सोचने समझने की सलाहियत या किसी भी चीज में जुस्तजू का जो एक लेवल होता है,
जी जी,
यानी चलना फिरना खाना पीना, क्या आया हमारी जितनी भी ये जो स्पिरिचुअल पावर होती हैं ये रूह की शक्ल में जब ये जिस्म से निकल जाती है इसमें सारी वो चीजें मौजूद होती हैं?
जी हाँ
यह पूरा बादशाह पावर होती है वो,
यानी मैंने देखें कि ये बात बारहा पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है कि हम मुंतकिल होते हैं। गौर करें क्या लफ्ज पढ़ते हैं, हम आलम राफ में मुंतकिल हो जाते हैं। ये हम कौन है, यानी कि मेरी जात ने जो जहन बनाया यहाँ पे, जो रूह बनाई, ये जहन जिसको नस्मा कहते हैं ये मुंतकिल होता है आलम इराफ में। ठीक है, वहां फिर एक स्टेज आती है जब ये नस्मा भी फौत हो जाता है, फिर सिर्फ रूह रह जाती है। ठीक हो गया? बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी के हम ऐसे जात मुंतकिल हो रहे हैं ना, तो जब हम जो कुछ यहाँ पे जिस तरह, इसीलिए तो ये हजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद आली मुकाम क्या है कि दुनिया जो आखरत की खेती है, मजरत अल आखरा, दुनिया जो है ये आखरत की खेती है। क्या मतलब है इस बात का कि यहाँ जो आपने तर्ज फिक्र अपना ली, जो आपने सोच अपना ली, जो आपने थिंकिंग पैटर्न बना लिया, जो आपका जाविया नजर बन गया, वो आपके साथ जाएगा, क्योंकि वो तो जहन का जाविया है। हमने उसको ठीक करना है। ये जो हम दुआएं करते हैं कि या अल्लाह तू हमें अपने पीर व मुर्शिद की तर्ज फिक्र अता फरमा दे, तो असल में ये क्या दुआ कर रहे हैं कि हम अपनी तर्ज फिक्र से निजात चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां हैं। उस तर्ज फिक्र से दस्तबरदार होकर हम एक ऐसी आला तर्ज फिक्र अपनाना चाहते हैं जिसके तहत हमारे अंदर अल्लाह को जानने का शऊर बेहतर से बेहतर से बेहतर होता चला जाए। जब हम बेहतर शऊर के साथ ऊपर जाएंगे तो जाहिर है अल्लाह के ज्यादा करीब होंगे ना। अब ये देखे ना सूरह वाकया में रब करीम ने साफ तो बता दिया कि तीन ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे आप, और वो तीन ग्रोह जो हैं वो आपकी तर्ज फिक्र के मुताबिक होंगे। क्या? एक दाएं वाले जो दाएं तरफ जाएंगे, जिनका डिसीजन दाएं तरफ जाने का है, जिन्होंने दाएं तरफ की सोच अपनाई है, साबुल यमीन वाली, वो जन्नत में लैंड अप करेंगे। और जो बाएं तरफ का रास्ता चुनेंगे, दे विल एंड अप इन हेल, यानी वो जहन्नम रसीद हो जाएंगे। लेकिन जो सीधा चलेंगे वो अल्लाह तक पहुंचेंगे, इसलिए उनको साबिकून भी कहा और मुकर्रबून भी कहा। तो ये सारा खेल है, इतना सा बात समझने की है। हमने अगर अपनी तर्ज फिक्र से बाज आ गए और वो सोच अपना ली कि हमारी तर्ज फिक्र साबिकून वाली बन जाए, तो हम सीधा अल्लाह की गोद में जाके बैठ जाएंगे। अगर आपका मतमा नजर सिर्फ जन्नत है, तो हजूर कलंदर बाब औलिया ने मकतूब ग्रामी में साफ लिखा है, तो जन्नत उसे कहेगी कि आओ लब्बैक, आ जाओ। यानी रूहानियत में टारगेट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात होना चाहिए, अल्लाह की जात की तफहीम होना चाहिए। हमें अल्लाह को समझना है, क्योंकि हमारे अंदर अल्लाह की दी हुई बख्शी हुई सलाहियतें हैं, हमने उनसे काम लेना सीखना है। ठीक हो गया जी? थैंक यू जी जनाब। और कोई सवाल? जी वालेकुम
सर, ये जो नस्मा जिसको कहा है यानी जहन, तो ये जो है वो हमारी किताबुल मौकूफ का रिकॉर्ड हो क्या?
जहन किताबुल मरकूम का रिकॉर्ड नहीं हो गया। किताबुल मरकूम तो मेरा बना हुआ सांचा फिक्र का नाम है, जो मेरे आमाल और अफाल के नतीजे में जो ज़हन बन गया, ठीक है
जी सर,
वो किताबुल मरकूम है, यानी के वो रिकॉर्ड है मेरी करतूतों का, चाहे वो अच्छी हैं चाहे बुरी हैं। देखिए ना, अल्लाह रब्बे करीम ने क्या कहा, वो मादरा का मा सिजीन, किताबुल मरकूम। फिर दोबारा फरमाया कि वो मादरा का माइलीन, तुम्हें क्या मालूम وہ بھی فرمایا کتاب المرقوم یعنی کہ سجین سجن گھٹن, یعنی یہ جو طرز فکر گھٹن والی بنی وہ بھی کتاب المرقوم, یعنی وہ ریکارڈ جو بنا پورا, ٹھیک ہے نا, وہ ہم نے جس ذہن سے کام کیا وہ کاموں کا ریکارڈ کتاب المرقوم کہلا رہا ہے نا. آگے طرز فکر جو ہے وہ ذہن کہلا رہی ہے. ویسے بہت باریک فرق ہے اس میں, آپ نے بہت نازک سوال پوچھا ہے, میں بس داد دے سکتا ہوں آپ کے سوال کی.
تھینک یو سر. تھوڑی سی یہ حورون عین کی وضاحت کر دیں گے پلیز.
آپ کہاں کانٹوں میں گھسیٹ رہے ہیں, دیکھیں نا جس بندے نہیں نہیں کوئی بات نہیں, میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں حور کا لفظ جو ہے, میں آپ کو ایک مثال سے واضح کر دیتا ہوں. دراصل یہ روح کا کمپینین ہے. کیا ہے؟ روح کا کمپینین. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن میں سورہ واقعہ کو توجہ سے پڑھیں, وہاں سابقون کے لیے حوروں کا ذکر ہے. یہاں پہ ہر ایرا غیرا نتھو خیرا, ٹھیک ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھا جنت میں جائیں گے اور اس میں جو کچھ ہے اس کے ہم اجارہ دار ہیں. یہ اپروچ انتہائی غلط ہے. اگر آپ اللہ کے لیے جیے اور آپ اللہ کے لیے مریں گے اور آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے,
جی سر,
تو گویا آپ کو اللہ اپنا نائب مقرر کرے گا. اب نائب کی حیثیت سے اب میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں, بڑی وضاحت ہو جائے گی اس مثال سے اگر آپ اجازت دیں. فرض کریں کہ آپ کو ڈپٹی کمشنر لگا دیا جائے, گورنر آپ کو اپنے کسی ضلع کا ڈپٹی کمشنر لگاتا ہے, تو ڈپٹی کمشنر آپ کو وہ کس وجہ سے لگا رہے ہیں اور آپ کیوں لگنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو بارہ کنال کا ایک بنگلہ ملے گا جس میں دو بڑے لان ہوں گے, ٹینس کورٹ ہوگا, تو سوئمنگ پول ہوگا, اور اس میں آپ کے جناب مالی ہوں گے, تو چوکی دار ہوں گے, تو خانسامے ہوں گے اور بیرے ہوں گے, تو کام کرنے والیاں ہوں گی, تو استری کرنے والیاں ہوں گی, تو آپ کے کپڑے دھونے والیاں ہوں گی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ جو ایک ڈپٹی کمشنر کو دنیا میں مراعات ملتی ہیں,
جی سر,
آپ ان مراعات کے لیے ڈپٹی کمشنر بنیں گے یا اصل میں آپ کو کچھ اور کام کرنے ہوں گے, پورا ضلع سنبھالنا ہوگا؟
جی سر.
دیکھیں نا, آپ جب پورا ضلع سنبھالنے کے بعد آپ کو ایک سٹیٹس کے مطابق اکاموڈیشن دی جا رہی ہے. اگر آپ اپنا کام نہ کریں اور سمجھیں کہ جی میں صرف اکاموڈیشن مار لوں, تو کوئی آپ کو ڈپٹی کمشنر اپوائنٹ کرے گا؟
بالکل نہیں سر.
اب یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ چونکہ حور کا ذکر آیا ہے سابقون کے لیے, تو سابقون کا مطلب ہے وہ لوگ جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں, اللہ کے لیے زندہ رہتے ہیں اور اللہ کے لیے مر جاتے ہیں.
بالکل صحیح.
جن کا مطمع نظر سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہے. دیکھیں نا, حضور مرشد کریم نے اپنے پیر و مرشد حضور قلندر باب اولیاء سے پوچھا کہ اگر کبھی مجھے موقع ملے اللہ سے بات کا, بات چیت کا, تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟
جی سر.
تو حضور قلندر باب اولیاء کا جواب سب کو پتا ہے, کیا فرمایا تھا؟
جی سر.
کہ اللہ سے اللہ کو مانگو.
جی سر.
اور کریں, یعنی کہ اللہ والوں کی طرز فکر اپنانی ہے ہم نے.
جی سر, بے شک.
اب اس میں یہ جو حور کا ذکر آیا, یہ لفظ حور عین, عین کہتے ہیں آنکھ کو, ہاں یا نہیں؟
جی سر. اب جی جی بالکل.
انسان با منزل نگاہ کے کچھ نہیں ہے. انسان حواس میں اپنے لوح قلم میں پڑھا کہ انسان صرف ایک نگاہ ہے. اب نگاہ کا ساتھی نگاہ ہی تو ہوگی. کیوں جی, واضح ہو گئی بات؟
الحمدللہ جی سر, تھینک یو سو مچ.
اب ایک اور اینگل سے بھی سن لیجئے, آپ کو اچھا لگے گا. یہ
ضرور سر.
ہے واو رے ہور, اس کے سپیلنگ ہیں. इनको उल्टा करें। रे वाव हे रूह बन गया, यानी के रूह का एक अक्ष है, रूह जो है उसका अक्ष जो है वो हूर है। इसलिए आपको असल सवाल ये पूछना चाहिए था कि जी मर्दों को तो हूरें मिलेंगी, हमें क्या मिलेगा? हाँ, तो वो बात वाजे हो गई ना कि हूर जो है वो रूह का कंपेनियन है, रूह के दर्जे पे। जैसे इंसान का यहाँ पे देखे ना, मादी जोन में हमारा कंपेनियन क्या है, उसे हम यानी नर और मादा कहते हैं, ठीक है, या मियां बीवी कहते हैं, जौज कहते हैं वगैरह, ठीक है। जन्नत तक जौज रहेगा
जी सर।
दुनिया में अमरात का लफ्ज आया कुरान में इसके लिए, बीवी के लिए, ठीक है। तो बीवी के लिए शौहर जो है मर, मर का लफ्ज है मर्द के लिए। तो ऊपर के जोन में तो जौज रह गया, जन्नत के जोन में जौज रह गया, असाबुल यमीन अपने जौजों के हमरा होंगे। आगे जो साबिकून है वो उनके लिए हूर, हूरम हूर क्या है, फिल खयाम, क्या वो आयत है कि वो, हाँ जी, कि वो अपने खैमों में मस्तूर होंगी, ठीक है
जी, बिल्कुल ठीक हो गया।
और किसी जिनो इंस ने उनको नहीं छुआ होगा, तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि वो आपकी ही रूह का अक्स है, लिहाजा किसी ने क्या छूना है उसको, कोई छू ही नहीं सकता।
बिल्कुल सही।
अब क्लियर हो गया?
अल्हम्दुलिल्लाह जी सर।
चले,
बहुत बहुत स्वागत,
शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह,
थैंक यू सो मच सर
जी, वेलकम
सर। आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, वरना हम तो सारी जिंदगी यही सुनते आए हैं कि मर्दों को हूरें मिलेंगी, जो बीवी हिम्मत गुजार होगी वो उधर भी उनकी सोच होगी।
अल्लाह का इनाम है जी, ये सब मेरे पीरो मुर्शिद का करम और उनका तसर्रुफ है। देखिए ना, ये बातें सारी उन्होंने जहन में क्लियर की, और वो चाहते हैं कि हम आपस में बहन भाई सब एक दूसरे से ये कंट्रीब्यूट करें, शेयर करें, जो बात जिसकी समझ में जैसी आ जाए उसको चाहिए कि उसकी तकरार करे, यानी उसको जहन में बार 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 दोहराए, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। तो जाहिर है कि बातों को समझ के फिर ज्यादा जौक और शौक से आप अल्लाह की तरफ तलब और जस्तुजू कर सकेंगे, ये मकसद है इन सारी बातों का जी।
बहुत शुक्रिया सर,
मोस्ट वेलकम जी। और कोई सवाल?
आपने बताए थे वो दोबारा बता देंगे।
रूह का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि जो अल्लाह ने काम उसके जिम्मे लगाया उसे पूरा करे। देखिए ना, रूह ने आगे उस तकाजे की तकमील के लिए पूरा एक निजाम वजह किया, ठीक है, एक पूरा रूहानी निजाम वजह किया, फिर एक जहनी निजाम वजह किया, फिर एक जिस्मानी निजाम वजह किया। फिर जिस्मानी निज़ाम के अपने तकाजे हैं, जहनी निज़ाम के अपने तकाजे हैं, तो रूहानी निज़ाम का सबसे बड़ा तकाजा क्या हुआ कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ने उसको तख्लीक किया है वो मकसद पूरा करे, ये है उसका सबसे बड़ा तकाजा।
अल्लाह ने जो तख्लीक किया मैं पहचाना जाऊं, उसके लिए रूह पर तख्लीक किया, ये तकाजा
जी। बिल्कुल, ये भी असल में अल्लाह ने खुद अपनी पहचान करवाने के लिए मखलूक को तख्लीक किया, फिर आगे उस मखलूक में से एक मखलूक यानी के आदम के अंदर अपनी रूह में से कुछ फूंका, यहां से ये अमरे आम जो था वो अमरे खास बन गया। ये अमर खास को अल्लाह रब करीम ने कहा कि इल्मुल अस्माता किया, यानी कि वो जो सलाहियतें उसके अंदर फूंकी थी उनके इस्तेमाल का इल्म सिखा दिया। ठीक हो गया। अब ये जो खसूसी इनायत की गई आदम पे, इसके पीछे जाएं तो वो इन्नी जायलो फिल अर्द खलीफा, वो कि भाई मैं चाहता हूं कि मुझे कोई जाने, मुझे पहचाने, लेकिन साथ साथ मुझे कोई असिस्ट भी करे। अब हम अगर इस शऊर से आरास्ता हो जाएं कि हम अमरे खास की मखलूक हैं, यानी अल्लाह ने अपनी रूह में से कुछ फूंका है मेरे अंदर, और फिर आपका जहन लग जाए कि मुझे इल्मुल अस्मा समझना है, और फिर आप उसको बरत के दिखाएंगे तो क्या होगा? अल्लाह रब्बे करीम ने क्या कहा जब आदम ने अपना एक्सप्रेस किया? अल्लाह ने कहा बताओ, जाहिर करो जो तुमने सीखा। तो हजरत आदम ने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, सिर्फ वो वर्बली पढ़ के नहीं सुनाया कि मुझे याद हो गए ये नाम। जब डेमोन्स्ट्रेट किया तो अल्लाह ने क्या कहा? फरिश्तों से कहा इसके सामने सजदा रेज हो जाओ, यानी सबमिट योर सेल्फ टू हिम, खुद को इसके हवाले कर दो, क्योंकि ये अब मेरा नायब बनकर सारा काम करेगा। अब क्लियर हो गया। तो रूह के तकाजे जो हैं उनमें से अल्लाह की पहचान, फिर अल्लाह की बख्शी हुई सलाहियतों की पहचान, फिर अल्लाह की सलाहियतों को इस्तेमाल करने के जो तरीके खुद अल्लाह रब करीम ने हमें सिखा दिए थे, हमारी रूह को सिखा दिए थे, उनकी जानकारी, क्या ये सब रूह के तकाजे नहीं है? जी और कोई सवाल है या यहाँ पे अल्लाह हाफिज कहने? जी एनी क्वेश्चन? चले, थैंक यू जी,
थैंक यू सो मच सर,
अल्लाह आपको खुश रखे जी, थैंक यू वेरी मच,
थैंक यू सर,
मैं ओके, अल्लाह हाफिज़।